ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जय उधरसेननाहो जेण महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोद्धरियो समप्पियो फुफयन्तस्स। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। सातवीं पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 116 पर आ गए। अभी यहाँ एक जीव की अपेक्षा कालानुगम की बात चल रही है और उसमें भी गतियों में पहले काल कितना होता है, यानी एक एक भव की स्थिति कितनी लंबी या कितनी छोटी हो सकती है, उसकी बात चल रही है। सबसे पहले नरक गति की बात उठाई है, तो नरक गति में एक जीव की अपेक्षा काल कितना है, यानी वो नरकायु उसकी कितनी होगी वहाँ की, तो कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर वर्ष। उसमें भी पहली पृथ्वी दूसरी पृथ्वी ऐसे अलग अलग बताएंगे। पहली पृथ्वी में भी उन्होंने बताया कि कम से कम है जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागर। परंतु पहली पृथ्वी में भी बहुत सारे पाथड़े जिसको कहते हैं 13 है ना, तो उसमें भी आयु अलग अलग होगी वहाँ की स्थिति जिसको कहते हैं, तो उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे हमने देखे तो ऊपर के पाथड़े में, पहले पाथड़े में कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 90,000 वर्ष। दूसरे पाथड़े में वहाँ एक समय अधिक शुरू हो जाएंगे, यानी 90,000 वर्ष वाला वो पहले पाथड़े में, 90,000 और एक समय अधिक वो दूसरे पाथड़े में, यानी वहाँ से लेकर हमने देखा था कि 90,00,000 तक तीसरे पाथड़े में, दूसरे पाथड़े में सॉरी, पहले में 10,000 से 90,000 और दूसरे में 90,000 प्लस एक समय वहाँ से लेकर 90,00,000 तक। तीसरे पाथड़े में 90,00,000 और एक समय अधिक और उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि। एक बार पूर्व कोटि, दो बार पूर्व, हम कहते ना मनुष्य की जो कर्म भूमि का मनुष्य है उसकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि, और यहाँ तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि। तीसरे पाथरे में सॉरी, तीसरे नरक नहीं, पहले ही नरक की बात चल रही है और तीसरे पाथरे की बात चल रही है, अच्छा हुआ आपने टोका। हाँ, अब चौथे पाथड़े में उसमें एक समय अधिक वहां से लेकर एक सागरोपम के दशम भाग, 1/10 ऑफ सागर। अब यहां से जो सबसे नीचे है, तो पहले ही नरक के सबसे नीचे के पाथड़े में एक सागर है, तो ये क्रम से बढ़ती हुई बताएंगे, तो उसके लिए गणित बता रहे जाने वाले। तो एक कम से कम है उसको मुख कहा, अधिक से अधिक उसको भूमि कहेंगे, वो एक सागर है। तो मुख और या मुख और भूमि, इसके द्वारा ये गणित समझाएंगे हम, ये बात अभी हम पढ़ेंगे। देखो ये अभी जो हम 116 पृष्ठ पर आ गए हैं, वहां से आठवीं लाइन, सातवीं लाइन वहां से पढ़ेंगे। यही सागरोपम का दशमांश, दशमांश हुआ है, दशमांश चाहिए, दशम अंश, दसवां अंश। आगे के पाथड़ों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु प्राप्त करने के लिए मुख कहलाता है, क्योंकि वह अल्प है, ये सबसे कम फिगर है, इसको मुख कहेंगे। तथा पूरा एक सागरोपम भूमि कहलाती है, अंतिम जो फिगर है वो एक सागर है, उसको भूमि कहेंगे, क्योंकि वह मुख की अपेक्षा बहुत है। भूमि को मुख के समान भागों में खंडित करके एक सागर को, जिसको हमने भूमि कहा, उसके ऐसे समान खंड करने कि प्रत्येक खंड एक दशांश सागर होना चाहिए। एक दशांश का एक खंड, एक दशांश का दूसरा खंड, एक दशांश का तीसरा खंड, ऐसे एक सागर में कितने खंड हो गए? 10 खंड हो गए। तो ऐसे समान खंड करने, उसमें से मुख को घटा देने पर, उसमें से एक खंड जो मुख वाला है उसको घटा देंगे तो 9 दशांश रह जाएंगे। शेष मान यानी शेष प्रमाण इतना, ये एक में से एक दशांश घटाने के लिए उन्होंने 10 दशांश लिखा, उसमें से एक दशांश हाँ बाद कर दिया और 9 दशांश रहते हैं। हिंदी में उसको 9/10 कहते हैं, हम मराठी में 9 दशांश कहते हैं, गुजराती में 9 दशांश। हाँ, उच्छेद 10 है क्योंकि चतुर्थ आदि 13वें पाथड़े पर्यंत 10 पाथड़ों का आयु प्रमाण निकालना है। उच्छेद यानी अभी देखो मुंह, उच्छेद यानी कितने बार योग करना है, चौथे पाथड़े से लेकर 13वें पाथड़े तक 10, चतुर्थ आदि 13वें पाथड़े पर्यंत 10 पाथड़ों का आयु प्रमाण निकालना है, इसको उच्छेद कहा। अब 10 स्थानों में अवस्थित हानि वृद्धि पाई जाती है। अवस्थित यानी फिक्स, ऊपर से हम कहेंगे तो वृद्धि कहेंगे, नीचे से गिनेंगे तो हानि कहेंगे। अवस्थित हानि वृद्धि यानी उतने ही प्रमाण में बढ़ता जाएगा, इक्वल प्रमाण में बढ़ता जाएगा। इन 10 स्थानों में से चतुर्थ पाथड़े संबंधी प्रथम स्थान में तो वृद्धि है नहीं। देखो ये चौथे पाथड़े से लेकर 5, 6, 7 ऐसे करते करते 13 पाथड़े हैं। चौथे पाथड़े के एक दशांश सागर है, चौथे में कोई वृद्धि का सवाल नहीं है। पांचवे के लिए वृद्धि एक दशांश और बढ़ेगी उसमें, तो इसलिए वो मुख है तो वैसा ही रहेगा। तो चौथे में कोई वृद्धि नहीं है, प्रथम स्थान में वृद्धि नहीं, इसलिए एक को 10 में से घटाकर शेष 9 का 9/10 में भाग देने से जो लब्ध आता है वह वृद्धि हानि का प्रमाण है। अब ये 10 स्थान है, 10 पाथड़े हैं, उसमें से पहले में कोई वृद्धि हानि का सवाल ही नहीं है, इसलिए 10 जो है संख्या उसमें से एक बाद किया तो कितनी बार वृद्धि होने वाली है? तो 9 बार, इसलिए 10 में से एक घटा देकर 9 रह गए, तो 9 बार वृद्धि होगी। तो वह वृद्धि हानि का प्रमाण है। यहां निम्न करण गाथा उपयोगी है। करण गाथा यानी गणित की गाथा, यह बताएंगे। हमें मुंह मालूम है, भूमि मालूम है, तो वो कैसे निकालना, उसके लिए करण गाथा बताते हैं। हम गाथा पढ़ेंगे। मुह भूमि न विशेषो उच्छय भजिदो दुजो हवे वड्ढी वड्ढी इच्छय गुणिदा मुह सही आहो वड्ढी फलम। वो इच्छा का बराबर नहीं, वो ई को ही रफार लगाया है, बीच में वो बेलांटी दिया ना इच्छा के आगे, उसकी जरूरत नहीं है। देखो इसका अर्थ हम पढ़ते हैं, मुख और भूमि का जो विशेष, विशेष यानी उसमें डिफरेंस, अंतर, जो विशेष अर्थात अंतर हो उसे उच्छेद से भाजित कर देने पर, हमने देखा था उच्छेद है 10 और अंतर कितना है, एक में से एक दशांश घटा दिया तो अंतर 9 दशांश है, उसको उच्छेद से भाजित कर देने पर जो वृद्धि का प्रमाण आता है उस वृद्धि को अभीष्ट से गुणा करके, अभीष्ट यानी इच्छित, उससे गुणा करके मुख में जोड़ने पर वृद्धि का फल प्राप्त होता है। अब ये तो गाथा बताई, इसका विस्तार अभी हमको समझाएंगे। पुनः इस प्रकार लाए हुए वृद्धि के प्रमाण को 10 स्थानों में स्थापित कर एक आदि एक एक अधिक से क्रम से बढ़ी हुई शलाकाओं से गुणित कर लब्ध को मुख में मिला देने से प्रत्येक अभिष्ट पाथड़े का आयु प्रमाण निकल आता है। अब वो नीचे बताएंगे कैसे निकालना। इस प्रकार निकला हुआ चतुर्थ आदि पाथड़ों का आयु प्रमाण इस प्रकार है। ऊपर क्रम संख्या लिखते हैं 10 बार है ना अभी, और पाथड़ा पहले स्थान पर 4 है और 10वें अभी हम 10 जो बताए 10 बार बुद्धि होनी है तो 10वें स्थान पर 13वां पाथड़ा है, वहां के आयु का प्रमाण बता रहे हैं। तो 1 दशांश सागर। अब क्रम से 1 दशांश 1 दशांश बढ़ेगा तो 1 दशांश में और 1 दशांश मिला देने पर 2 दशांश हो जाते, और 1 दशांश तो 3 दशांश, इस तरह से 4 दशांश को हो या 2 पंचमांश को हो एक ही बात है। फिर 5 दशांश को हो या आधा सागर को हो एक ही बात है। फिर 6 दशांश को हो या 3 पंचमांश एक ही बात है। फिर 7 दशांश कहा 4 पंचमांश यानी 8 दशांश। फिर 9 दशांश और 1 सागर। तो उन्होंने भूमि में से मुख को माइनस कर दिया तो 9 आया। 9 बार वृद्धि होगी तो 9 बार कितनी वृद्धि होगी? 1 दशांश 1 दशांश 1 दशांश वृद्धि होगी। शंका, यह अर्थ सूत्र में तो कहा नहीं गया, फिर वह कहां से जाना जाता है? सूत्र में तो ये कुछ बातें नहीं लिखी है तो कहां से जानी आपने? समाधान, क्यों नहीं कहा गया? देशामर्शक भाव से कहा ही गया है। देशामर्शक हमने देखा था, कोई थोड़ी बात बताए तो उसमें से पूरी ही जान लेना, तो वहां जो थोड़ा कुछ बताए उसको कहते हैं देशामर्शक। देश यानी पार्शल, आमर्शक यानी उसका बताना, यानी पार्शल बता देते तो पूरा जान लेना। मराठी में कहावत है तासे ताक भात पहचानना। एक खाली इनिशियल को एक लेटर बता दिया तो पूरा ही समझ लेना, यानी शॉर्ट में समझ लेना। ऐसे यहाँ शॉर्ट में कथन किया है पर उसमें से विस्तार जाना जा सकता है। शंका, प्रस्तुत सूत्र देशामर्शक है यह कैसे जाना जाता है? इसमें से कुछ बातें निकल सकती है ये कैसे जाना आपने? तो उसका समाधान, गुरु जी के उपदेश से जाना जाता है कि प्रस्तुत सूत्र देशामर्शक है। गुरुओं के द्वारा जो उपदेश मिलता है वे तो सूत्र बताते हैं और सूत्र का विस्तार करके भी बताते हैं, तो ये परंपरा से हम जानते हैं कि ये ऐसा देशामर्शक है और इसमें से इतना सारा अर्थ निकलता है। अब ये तो पहली पृथ्वी के 13 पाथड़े हैं, उसमें से 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागर तक के उन्होंने बता दिए। पहले पाथड़े में 10,000 से लेकर 90,000, दूसरे पाथड़े में 90,000 प्लस एक समय से लेकर 90 लाख, तीसरे पाथड़े में 90 लाख से लेकर असंख्यात पूर्व कोटि, चौथे पाथड़े में उसमें एक समय अधिक से लेकर उसकी उत्कृष्ट वहाँ की आयु जो है वो कितनी है अभी हमने देखी 1/10 ऑफ सागर, और वहाँ से आगे आगे उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट आयु हम गिनेंगे तो 1/10 सागर बढ़ती चली जाएगी। तो 13वें पाथड़े में 1 सागर की उत्कृष्ट आयु है। अब ये दूसरी पृथ्वी की बात बताएंगे। विदियाए जाव सत्तमाए पुढ़वीए, वो प के नीचे उकार देना, पुढ़वीए नेरैया केवचिरम काला दो होती। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक की, ये थोड़ा सा प्रिंट अस्पष्ट है, उस वहां तक की पृथ्वियों में नारकी जीव वहां कितने काल तक रहते हैं? ये तो प्रश्न हुआ। यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन એક તીણની સત્ત દસ સત્તારસ બાવીસ સાગરવમાની સાદી રૈયાણી ક્યાં કહેતે જઘન્ય સે, એ જઘન્ય કી બાત કી, જઘન્ય સે દૂસરી પૃથ્વી મેં કુછ અધિક એક સાગરોપમ. પહેલી પૃથ્વી કી ઉત્કૃષ્ટ કિતની થી? એક સાગર. તો દૂસરી પૃથ્વી મેં જઘન્ય કિતની હોગી? એક સાગર ઓર પ્લસ એક સમય. તો યે સબ જઘન્ય આયુ અભી બતા રહે, દૂસરી પૃથ્વી કી જઘન્ય આયુ, તીસરી પૃથ્વી કી જઘન્ય આયુ, ઉત્કૃષ્ટ આયુ બાદ મેં બતાએંગે. તો સભી નરકો કી જઘન્ય બતા રહે. તો જઘન્ય સે દૂસરી પૃથ્વી મેં કુછ અધિક એક સાગરોપમ, તીસરી મેં કુછ અધિક તીન, ચૌથી મેં કુછ અધિક સાત, પાંચમી મેં કુછ અધિક દસ, છઠવી મેં કુછ અધિક સત્ર ઓર સાતવી મેં કુછ અધિક બાઈસ સાગરોપમ કાલ તક નારકી જીવ રહેતે હૈ. ઇસી સૂત્ર સે હમ ઉપર ઉપર કે પૃથ્વી કે ઉત્કૃષ્ટ બતા સકતે હૈ. યે જો બાતે યાદ લીએ, યે જો દૂસરી મેં એક સાગરોપમ કુછ અધિક, તો પહેલી કી ઉત્કૃષ્ટ એક સાગરોપમ યે હમકો માલુમ હૈ. અબ યહાં તીસરી મેં કુછ અધિક તીન સાગર કહા, તો દૂસરી મેં ઉત્કૃષ્ટ તીન સાગર હો જાતા. वो सूत्र अलग बताएंगे, पर वी कैन डिराइव, क्योंकि आगे आगे एक समय बढ़ेगा, उसी को यहाँ कुछ अधिक लिख दिया उन्होंने. देखो अब यहाँ पर यथा योग्य जहाँ जो होगा विवक्षा वैसे कहेंगे. जैसे हम साधिक कहते हैं, साधिक 2000 सागर, तो उसमें तो बहुत सारा त्रस जीवों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, तो साधिक में वहां एक समय की बात नहीं है. जहां जो योग्य होगा वहां उतना समझना. दूसरी पृथ्वी में, इसी का फिर अर्थ करते हैं, दूसरी पृथ्वी में एक समय अधिक एक सागरोपम. देखो सूत्र के नीचे अभी जो विस्तार बता रहे, एक समय अधिक बोला ना यहां पर. तीसरी पृथ्वी में एक समय अधिक तीन सागरोपम, चौथी पृथ्वी में एक समय अधिक सात सागरोपम, पांचवी पृथ्वी में एक समय अधिक दस सागरोपम, छठी पृथ्वी में एक समय अधिक सत्रह सागरोपम और सातवीं पृथ्वी में एक समय अधिक बाईस सागरोपम आयु प्रमाण काल तक है. यानी सातवीं पृथ्वी वाले हम 33 सागर कहते, पर वो तो उत्कृष्ट आयु. 22 सागर और एक समय से लेकर 33 सागर तक वहां वेरिएशंस हो गए. शंका, सूत्र में सातिरेक अर्थात कुछ अधिक शब्द आया है, उससे एकमात्र समय ही अधिक होता है, यह कैसे जाना जाता है? ये हमारे प्रश्नों का उत्तर वहां है सारा, उसका समाधान. क्योंकि उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर ने आगे आगे उपरिम पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति एक समय अधिक होकर नीचे नीचे की पृथ्वियों की जघन्य स्थिति होती है. क्या कहते हैं, आगे आगे ऊपर के पृथ्वी की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय बढ़ाकर नीचे वाली पृथ्वी की जघन्य स्थिति होती है, ऐसा आगम वाक्य है. इस आगम वचन से ही जाना जाता है कि उपर्युक्त पृथ्वियों की जघन्य आयु में सातिरेक का प्रमाण केवल एक समय अधिक है. उपर्युक्त यानी उपर्युक्त, ऊपर बताए हुए, जैसे दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक की बात बताई उन्होंने, एक समय अधिक ऐसा करके, फिर एक सागरोपम में एक समय अधिक, फिर तीन सागरोपम, फिर सात सागरोपम, दस सागरोपम, सत्रह और बाईस. अब उत्कृष्ट बात करेंगे. उक्कसेण तिन्नी सत्त दस सत्तारस बावीस तैतीसम सागरोवमाणी. फिगर्स वही है, उसमें कुछ अधिक लिखा था और वो जघन्य बना दी थी नीचे वाले की पृथ्वी के, और यहाँ उत्कृष्ट उत्कृष्ट बता देंगे. जैसे पहले की उत्कृष्ट तो हमने देख ली है, पहले नरक की तो एक सागर थी, अब दूसरे नरक की उत्कृष्ट है होगी वो, हाँ तीन सागर होगी. देखिए द्वितीय आदि पृथ्वियों में नारकी जीव उत्कृष्ट से क्रमशः तीन सात दस सत्रह 22 और 33 सागरोपम काल तक रहते हैं। यहाँ पर सूत्र के अर्थ करने में यथासंख्य न्याय का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात 3-7 आदि सागरोपमों को क्रमशः दूसरी तीसरी आदि पृथ्वियों के आयु प्रमाण रूप से योजित करना चाहिए। ये क्रमशः बात दिखी ना, द्वितीय आदि में क्रमशः, तो द्वितीय में जो है अभी 3 है, तृतीय में 7 है, ऐसी बातें बताना चाहिए। पूर्वोक्त दोनों सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि वे प्रत्येक पृथ्वी की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की प्ररूपणा द्वारा अपने अपने समस्त पाथरों की आयु स्थिति की सूचना करते। यहाँ तो एकमात्र दूसरे पृथ्वी की जघन्य और उत्कृष्ट बता दी, तीसरे की जघन्य उत्कृष्ट बता दी, तो दूसरे में जितने पाथर है उन सब की उसमें आ जाती है, वो बताएंगे निकाल कर, इसलिए इसको देशामर्शक कहा। जैसे पहले नरक की जघन्य तो उन्होंने 10,000 और उत्कृष्ट एक सागर बताए, और फिर वो 13 पाथरों में उन्होंने विभाजित करके भी दिखाया, सूत्र में नहीं था फिर भी बताया, तो वो देशामर्शक सूत्र होने से उसमें से वो अर्थ निकाला है। ऐसे यहाँ भी हर एक नरक में जितने पाथड़े होंगे वहाँ उसकी संख्या और उसकी आयु निकाल के बताएंगे। अब हम यहाँ इन दोनों सूत्रों के द्वारा सूचित अर्थ का प्ररूपण करते हैं, वे इस प्रकार है, यानी प्रत्येक नरक की अभी हमें जघन्य भी मालूम है और उत्कृष्ट भी मालूम है, तो सभी पाथड़ों की वो अलग अलग स्थिति बताएंगे, वे इस प्रकार है। अब द्वितीय पृथ्वी में 11 इंद्रक है, इंद्रक यानी सेंटर वाला जो बिल है नरक का, तो उसको इंद्रक कहेंगे, और उसमें श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक उस लेवल में होंगे। इंद्रकों के नाम बताए हैं यहाँ, तो द्वितीय पृथ्वी के जो 11 इंद्रक है, पहले में हमने कितने देखे थे याद है ना, 13, हाँ उनके नाम बताते हैं। देखो, तनक, स्तनक, वनक, मनक, घात, संघात, जीव, जीवक, लोल, लोलप और स्तन लोलप, लोलुप है, हाँ वो आया नहीं, लोलुप और स्तन लोलुप, ये क्रमशः द्वितीय पृथ्वी के 11 इंद्रकों के नाम है। इनकी आयु स्थिति लाने के लिए प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति को मुख करके, ये मुंह करना उसका, तथा दूसरी पृथ्वी की 3 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु को ये के नीचे उकार करना, भूमि करके, यानी अब यहाँ भूमि कितनी है, 3 सागर, और मुख किसको किया, वो प्लस को नहीं लेना, वो ऊपर रखना, क्योंकि देखो क्यों ये इन्होंने अच्छी बात की है, यहाँ तो हमने मुख किया चौथे पाथड़े की उत्कृष्ट को, और फिर भूमि किया 13 वाले को, एक सागर को, फिर परंतु इसको बढ़ाया नहीं, उसको ऐसे ही रखा। अब यहाँ क्या करें, वो ऊपर के जो नरक है वो एक सागर उसको मुख रखा, और 3 सागर इसको भूमि करेंगे, अब इसमें बताएंगे। देखो क्या कहते, आयु स्थिति लाने के लिए प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति को मुख, यानी एक सागर वो मुख हुआ, और दूसरी पृथ्वी की 3 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु को भूमि करें, और 11 इंद्रकों को उच्छेद करके पूर्वोक्त तरण गाथानुसार द्वितीय पृथ्वी के 11 पाथरों में से प्रत्येक का आयु प्रमाण मुख में ले आना चाहिए। अब उसका उदाहरण देके समझाते। द्वितीय पृथ्वी संबंधी मुख एक सागर, भूमि 3 सागर और उच्छेद 11, अतएव प्रत्येक प्रस्तर के लिए वृद्धि का प्रमाण हुआ, ये एक समय अधिक वो तो मिनिमम था, हमको तो मैक्सिमम हर एक की दिल लानी है ना, प्रत्येक पाथरी की उत्कृष्ट आयु लानी है। तो ये कितने बार बढ़ेगा? अभी ये तो जो मुख है वो पहले ही नरक संबंधी बताए, यहाँ तो 11 बार बढ़ेगा, वहां चौथे से तेरहवें तक 10 थे परंतु वो 9 बार बढ़ा था। हमने ये मुख है वो ऊपर ही डाल दिया है, ऊपर की पृथ्वी में, इसलिए यहाँ जितने पाथर है उतने ही बार बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर उच्छेद 11 का है। तभी भूमि हुई 3 और मुख हुआ 1 और बढ़ेगा 11 बार। देखिए, इसलिए प्रत्येक प्रस्तर के लिए वृद्धि का प्रमाण हुआ 3 में से 1 घटाया, भूमि में से मुख घटाया 2 आए और उसको 11 से भाग दिया। 11 बार वहां बढ़ना है ना, इसलिए 11 से भाग दिया, तो 2/11। इसको इच्छा अर्थात प्रस्तर की क्रम संख्या से गुणा करने पर व मिलाने पर 11 प्रस्तरों का आयु प्रमाण इस प्रकार आता है। अभी प्रस्तर 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से 11 लिखे, प्रस्तर यानी पाथड़ा। तो पहले पाथड़े में कितना, ये तो 2/11 वृद्धि है और मुंह में मिला देना है, वो तो एक सागर से हमने शुरू किया था, वो तो पहले ही हो गए। तो पहले ही पाथड़े में अधिक से उत्कृष्ट आयु कितनी है, 1.2/11। उतना उतना मिला ना, प्रत्येक पाथड़े में 2/11 मिलाते जाना, क्योंकि मैक्सिमम 3 है और उसमें से 1 हमने माइनस किया था, तो 2/11 आए थे। अभी प्रत्येक पाथड़े में 2/11 मिलाना, तो प्रत्येक की उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आयु मिलेगी, परंतु उसको मुंह में मिलाना है, क्योंकि बेसिक अपना 1 है ना, 1 सागर ऊपर की थी, तो दूसरे पृथ्वी के पहले पाथड़े में कितनी होगी, 1 सागर प्लस 2/11 सागर, तो 1.2/11। उसमें और 2/11 मिलाएंगे तो 1.4/11, यानी 1 तो फिक्स करना और उसमें मिलाते जाना, फिर 1.6/11, 1.8/11, 1.10/11। अभी 13/11 के बदले अभी 2 हो गए ना, तो 2.1/11 ख्याल में आया, कैसे आया? हाँ, फिर 2.3/11, 2.5/11, 2.7/11, 2.9/11 और फिर 2.11/11 यानी 3। तो 3 हमको मालूम है उत्कृष्ट स्थिति है, तो ये आसान है ना, कितना कितने पाथड़े हैं और वहाँ की उत्कृष्ट कितनी स्थिति है और ऊपर वाली उत्कृष्ट कितनी है, उतने बार हम उसमें बढ़ा देंगे। अब ये तीसरी पृथ्वी का पढ़ने के पहले हम ही निकालेंगे, उसमें पाथड़े कितने है? देखो 9 है, 9 इंद्रक है, 9 पाथड़े। अभी मुख किसको लेना, ऊपर की पृथ्वी की उत्कृष्ट 3 सागर, और इसकी उत्कृष्ट कितनी है, 7। भूमि माइनस मुख 4 आ गए, तो 4 को तो हम फिक्स रखेंगे, प्लस क्या करना है, अब कितने बार बढ़ेगा, 9 बार, तो कितने बढ़ेगा, 4 नमोश। तो अभी हम 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 बार लिखेंगे, तो पहले में 4.4 नमोश, तीन बराबर, अच्छा मैंने घोटाले, ऊपर का 3 है ना, मुख 3 है, 3 में ऐड करना, तो 3 रखना और फिर 4, तो उसमें 4 बढ़ा के जाना। अभी हम पढ़ेंगे इसको, हाँ 3.8 हो गए और उसके बाद 12 हो जाएंगे तो पूर्णांक बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हाँ 3। देख, अब ये तीसरी पृथ्वी में अभी उनके नाम बता रहे, अच्छा हम करके दिखाएंगे। हाँ, देखो ये बेसिक अपना कितना है, ऊपर के पृथ्वी का 3 सागर है। अभी पहले पाथड़े की उत्कृष्ट आयु कितनी है देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, नीचे अपना 7 है और ऊपर 3 था, 7 में से 3 माइनस किए 4 आ गए, तो 4 तो बेसिक रखने ही, ये ऊपर का 3 तो बेसिक रखना ही। अब ये 4 बढ़ने वाले हैं, कितने जगह में 4 बढ़ेंगे, 9 जगह में 4 बढ़ेंगे। हाँ, तो प्रति 4 नमोमांश हो जाएगा, 4 जो है बढ़ने वाले वो 9 पाथड़े में मिलकर 4 बढ़ेंगे, तो एक एक पाथड़े में कितना बढ़ेगा, 4/9 बराबर, तो 3.4 नमोमांश, फिर उसमें और 4 नमोमांश ऐड करेंगे यानी 8 नमोमांश हो जाएंगे दूसरे पाथड़े में, फिर और 4 नमोमांश, ये 12 हो गए, तो 12 में से 9 निकाल लेना और 3 नमोमांश रह जाएंगे, 3 नमोमांश लिखो या 1/3 लिखो तो भी चलेगा वहाँ। हाँ, इस तरह से बढ़ेगा सब। अब इसको पढ़ेंगे हम, ये अंतिम लाइन, तीसरी पृथ्वी में तब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ लिखेंगे हम, देखो
वो तो लास्ट आंसर आएगा तो टैली हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल टैली हो जाएगा, हम ऐसे लिखते आड़ा। तो पहले में हमने कितना देखा, 3.4 नमोमांश, दूसरे में 3.8 नमोमांश, तीसरे में 4.3 नमोमांश, हाँ या 1/3 कहो तो भी चलेगा, चौथे में 4.7 नमोमांश, पांचवे में अभी 7 + 4 = 11 हो जाएंगे तो 2 रह गए, 5.2 नमोमांश, छठे में 5.6 नमोमांश और सातवे में इसमें 4 मिला देना तो 10 हो जाएगा ना, हाँ तो 6.1 नमोमांश, आठवें में 6.5 नमोमांश और उसमें 4 मिला दो तो 7 हो जाएंगे। ये तो टैली है ना, हम कहीं मिस्टेक कर दे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, जैसे अभी मैंने 4 कह दिया, वैसे बेसिक ख्याल में आना चाहिए बस इतना ही, वो फिगर्स तो कुछ याद में रखने नहीं है, ये जब पढ़ेंगे तो उसका अर्थ अपने को भाषित होता है कि नहीं होता है, इतना देखना है। हम तो बुद्धिशाली नहीं है पंडित जी जैसे, टोडरमल जी ने तो कमाल करके दिखाया था।
आप तो है
ना, कुछ नहीं। हाँ देखो, तीसरी पृथ्वी में, ये तो खाली वहां से अर्थ समझा सकती है और कुछ नहीं, अपनी बुद्धि कुछ नहीं इसमें। हाँ देखिए, तीसरी पृथ्वी में तप्त त्रसित तपन तापन निदाग प्रज्वलित उज्ज्वलित सुप्रज्वलित और संप्रज्वलित नामक 9 इंद्रक है। देखो ये जिनेन्द्र की वाणी में तो सभी नरकों के नाम, उनके पाथरों के नाम, इंद्रकों के नाम सब है, इनकी आयु भी पूर्वोक्त विधि से जानकर ले आना चाहिए। उनकी संदृष्टि इस प्रकार है, आयु के प्रति सागर में
सागर है।
सागर, हाँ आयु प्रमाण सागर में आयु प्रमाण, सागरों में आयु का प्रमाण है, ये कितने सागर है वो वहां बताया है। अभी हम इसके तीसरे की बात देखें, प्रस्तर यानी वो पाथड़ा कौन से नंबर का है, ये नंबर ऊपर से नीचे दिए है क्योंकि ऊपर ऊपर आयु कम है, नीचे नीचे ज्यादा है, तो इसमें 9 पाथड़े में अभी जो हमने निकाले थे 3.4 नमोमांश, 3.8 नमोमांश, तीसरे में 4.3 नमोमांश, चौथे में 4.7 नमोमांश, पांचवे में 5.2 नमोमांश, छठे में 5.6 नमोमांश, सातवें में 6.1 नमोमोश, आठवें में 6.5 नमोमोश और नौवें में 7 पूरे हो जाते हैं। अभी चौथी पृथ्वी के भी हम निकालेंगे। हो पहले पृथ्वी में पाथड़े 13 थे, दूसरी पृथ्वी में 11 थे, तीसरी में 9 थे, अभी चौथी में है 7, विषम संख्या है। सातवें में एक ही लेयर है। तो अभी चौथी पृथ्वी है और 7 पाथड़े हैं। तीसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु अभी अभी हमने देखी 7 सागर, और उत्कृष्ट कितनी है 10 सागर है, और पाथड़े कितने हैं 7 है। ये ऊपर की है ना, ये ऊपर गए तो उसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएंगे। सातवें के लिए 10 सागर आने वाली, तो कितनी बार बढ़ेगा 7 बार बढ़ेगी। तो 7 बार में कितनी बढ़ेगी, 10 में से 7 कम कर दिए 3 बढ़ेगी, तो 3 दशांश बढ़ेगी। 10 बार बढ़नी है ना, सॉरी 10 सागर है, 7 बार बढ़े अच्छा है, मुझे घोटाला कर रही हूँ मैं। 7 बार बढ़नी है और 7 बार बढ़नी है और हर कितनी बढ़ेगी 3 सागर बढ़ेगी, 3 सागर 7 बार में भी बढ़ेगी, तो 3 सागर डिवाइडेड बाय 7, 3 सप्तमांश हर बार बढ़ेगी। अभी फर्स्ट जो है वहाँ कितनी बढ़ेगी, तो ऊपर का जो 7 है उसको रखना, 7 में मिलाते जाना, 7 में हर बार 3 सप्तमांश मिलाना है। तो पहले के लिए 7.3 सप्तमांश, दूसरे के लिए 7.6 सप्तमांश, तीसरे के लिए अब ये 6 में 3 हो मिले हाँ, तो एक 8 तो पूर्णांक हो जाएंगे और 2 रह जाएंगे, तो 8.2 सप्तमांश। चौथे के लिए 8.5 सप्तमांश, फिर 8 सप्तमांश का एक पूर्णांक बढ़ेगा हाँ, 9.1 सप्तमांश, और फिर इसमें कितना मिलना है और 3 सप्तमांश, तो 4 सप्तमांश हो जाएगी, 9.4 सप्तमांश, 4 में और 3 मिल जाते हैं तो 10 पूरे हो जाते हैं। आसान है ये, तो खाली हम ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है क्या बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो अभी तो आगे तो आसान होने वाले, क्योंकि पत्थरे तो पाथरे कम हो जाएंगे तो गणित कम करना पड़ेगा ये चौथी की बात पढ़ेंगे। चौथी पृथ्वी में आर तार मार वांत तम खात 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 नामक 7 इंद्रक है। ये कितने कौन सी में कितने इंद्रक है, कितने पाथड़े है, ये हमें पता चलेगा ना, तो ये तो आसान है हाँ, 7 इंद्रक है। इनका आयु प्रमाण भी पहले के समान ले आना चाहिए, उसकी संदृष्टि इस प्रकार है। ये जो प्रस्तर नंबर लिखे है 7 क्रम से, और वहाँ आयु का प्रमाण सागरों में बताता है। पहले में 7.3 सप्तमांश, 7 तो ऊपर की है 7 सागर, उसमें 3 सप्तमांश मिलाना और हर बार 3 सप्तमांश मिलाते जाना। दूसरे में 7.6 सप्तमांश, तीसरे में 8.2 सप्तमांश, चौथे में 8.5 सप्तमांश, पांचवें में 9.1 सप्तमांश, छठे में 9.4 सप्तमांश और सातवें में 10 सागर। अब पांचवी पृथ्वी में 5 इंद्रक हैं। अभी हम निकालेंगे ना, अभी यहाँ मैक्सिमम कितना था पूर्व का 10 सागर, और यहाँ की उत्कृष्ट आयु जो है 17 सागर पांचवे के लिए। ये 7 बढ़ेंगे, 7 बढ़ने वाले हैं, कितने में 7 बढ़ेंगे, 5 में 7 बढ़ेंगे हाँ, तो 7/5 यानी 1.25 इतना बढ़ेगा। तो 10 सागर में 10 रखना प्लस 1.25, तो स्टार्टिंग ही ग्यारह पूर्णांक दो पंचमांश आते हैं, ये ना ग्यारह पूर्णांक दो पंचमांश, उसमें फिर एक पूर्णांक दो पंचमांश डालना तो बारह पूर्णांक चार पंचमांश हो जाएंगे, फिर उसमें एक पूर्णांक दो पंचमांश तो चार, हाँ तो चौदह पूर्णांक एक पंचमांश हो जाएंगे, उसमें फिर एक पूर्णांक यानी पंद्रह पूर्णांक दो पंचमांश तो तीन पंचमांश हो जाएंगे, और उसमें फिर एक पूर्णांक यानी सोलह हो गए और दो पंचमांश बढ़ाएंगे तो और एक बढ़ेगा तो सत्रह हो जाएंगे, सत्रह सागर हो जाएगी। तो देखो ये पांचवी पृथ्वी के नाम पढ़ेंगे, पांचवी पृथ्वी में तम भ्रम झष अंध और तिमिश्र नामक पांच इंद्रक है, उनके आयु प्रमाण की संदृष्टि इस प्रकार है। तो आयु का प्रमाण बताते, पहले प्रस्तर में 11 पूर्णांक दो पंचमांश, क्योंकि 10 में दो एक पूर्णांक दो पंचमांश बढ़ा है, फिर 12 पूर्णांक चार पंचमांश, 14 पूर्णांक एक पंचमांश, चौथे में 15 पूर्णांक तीन पंचमांश और पांचवे में 17 सागर। अभी छठी पृथ्वी में तीन है। अब यहाँ अपना स्टार्टिंग पॉइंट यानी मुख जो ऊपर के नरक का जो है वो 17 सागर और इसके उत्कृष्ट 22 सागर, तो 17 से लेकर 22, ये 22 तो तीसरे में पहले दो तीन में निकालना है हमको, तो 17 और 22 में डिफरेंस कितने का है, पांच सागर का डिफरेंस है, और पांच सागर कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीन में 5/3 एक्स्ट्रा मिलाना यानी एक पूर्णांक दो तृतीयांश, 17 में एक पूर्णांक दो तृतीयांश यानी 18 पूर्णांक दो तृतीयांश हो जाएगी, उसमें एक पूर्णांक दो तृतीयांश मिलाना 19 और ये 20 पूर्णांक एक तृतीयांश, उसमें और एक पूर्णांक दो तृतीयांश, दो तृतीयांश का एक होगा और यहाँ का एक यानी 22 सागर हो जाएगा। तो छठी पृथ्वी में हिम वर्दल और लल्लंक नामक तीन इंद्रक है, उनके आयु प्रमाण की संदृष्टि पहले प्रस्तर में 18 पूर्णांक दो तृतीयांश, दूसरे में 20 पूर्णांक एक तृतीयांश और तीसरे में 22। सातवीं पृथ्वी में अवधि स्थान नामक एक ही इंद्र है, क्योंकि वहां एक ही पाथड़ा है, वहां जघन्य आयु एक समय अधिक 22 सागरोपम तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम है। ऊपर सूत्र में पढ़ना रह गया क्या, क्या? नहीं बराबर है, 22 और 33। वहीं पर जघन्य और उत्कृष्ट बताया, एक ही पाथड़ा है ना। अवधि स्थान ये इंद्रक का नाम है, अवधि यानी मर्यादा, अवधि यानी अवधि ज्ञान को अवधि है, अवधि दर्शन है, ये अवधि स्थान इंद्रक का नाम है, सातवें नरक के सेंटर वाला ये। यहाँ तो नरकों की बात हो गई, नरकों में एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट आयु सभी की मिलकर भी बताई, एक एक नरक की भी बताई और प्रत्येक पाथड़े की भी बताई, चॉइस बहुत है कहते हैं जिसको जहाँ जाना है। अब दसवां सूत्र पढ़ेंगे, नहीं नहीं साइज अलग होती है, हाँ सेंटर में छोटे होते लंबे जाएंगे, असंख्यात योजनों के होते हैं बिल भी, नरकों के बिल भी बड़े बड़े होते हैं। आप भूल गए, पहले हमने 6 घंटे तक नरक की बात भूगोल देखा था, यहाँ पर 4 दिन लगातार 1.5 घंटे लिया था, हा? अपना यहाँ चला था, हाँ हाँ थे आप ना, उसकी कैसेट भी बनाई थी कुछ, ये तभी हम ये आप नहीं थे, हमने संयम प्रकाश में से लिया था वो। देखो आगे तिरियन तिरिक्ख गदी है, तिरिक्खो केवचिरम कालादो होदी, यहाँ होदी आया, पहले होंती आया था। तिर्यंच गति में जीव कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन खुद्दा भव गहनम, तिर्यंच गति में तिर्यंच जीव वहाँ जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक रहता है। एक क्षुद्र भव क्या होता है? जिसको अपर्याप्त जीवों की आयु कहते हैं, अपर्याप्त नाम कर्म का जिनके उदय है, ऐसे जीवों को लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। जीवों को ऐसे जो लब्धि अपर्याप्तक जीव, उनकी आयु कितनी है? तो श्वास के 18वें भाग में उतनी ही उनकी आयु है। उतने में वो जन्म मरण करते, हमने देखा था पहले छड़ाला में भी आता है, एक श्वास के श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे। तो वैसे ये क्षुद्र भव ग्रहण कहते हैं उसको।
एक छेद में 24 सेकंड आपने बताया तो वही है।
एक
एक छेद में 1/24 सेकंड,
1/24 नहीं आया था, कुछ अलग बात हमने ये निकाला था हमने। देखो एक जो मुहूर्त है 48 मिनट वाला, उसमें एक समय करेंगे तो अंतर मुहूर्त कहेंगे बड़ा, तो उसमें ऐसे क्षुद्र भव लगातार हो गए तो कितने हो गए? तो 66,336 आए थे। उसमें एक इंद्रियों के 66,132 थे और बाकी द्विंद्रियों के 80, तीनद्रियों के 60, चतुरिंद्रियों के 40 और पंचेंद्रियों के 24। उसमें असंगी के, संगी के और मनुष्य के, ऐसी बात हमने देखी थी, 8-8-8। तो ये तो क्षुद्र भव ने, ये अपर्याप्त जीव जो है उनकी ये कम से कम इतनी आयु होती है उसको। वो नहीं, हाँ वो पहले निकाला था, क्योंकि ये श्वास कितना, एक श्वास कितना होता है? श्वास यानी वो नाड़ी के ठोके। हाँ, एक मिनट में कितने? 72। कितने लेना है? 80 लेना है, 86 ले लेंगे। एक मिनट यानी 60 सेकंड में 80 श्वास, बराबर, यानी 80 श्वासों के लिए 60 सेकंड। तो एक श्वास के लिए कितना? 3/4 आया सेकंड, एक श्वास। अब ये 3/4 का 18वां भाग करना, 3/4 × 1/18 ये सर, हाँ वो 1/24 आपको बराबर याद है। हाँ ये राउंड अबाउट समझाने के लिए फिगर,
80 लेव तो राउंड अबाउट आता है।
हाँ
वो लेव तो गड़बड़
है। हाँ वो तो थोड़ा ये समझाने के लिए, कितना कम है ये समझाने के लिए। अब 72-78 जो यथा योग्य होगा उसको लेंगे तो वैसे फिगर्स कम ज्यादा होगी, पर ये सेकंड का भी कुछ हिस्सा है, इतना तो ख्याल में आता है ना, यानी उनकी आयु कितनी अल्प होगी। या ऐसा भी कर सकते हैं ना, 48 मिनट डिवाइडेड बाय 66,336 तो सेकंडों में आएगा, तो 48 मिनटों के सेकंड करना उसको, 60 से गुणा करना उसको, और फिर उसके वो एक ये लेके रखना, क्या कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, वो कैलकुलेशन करते करते तो वो अपर्याप्त तो भाव कितने ही चले जाएंगे उसके। अभी उसका कारण बताते देखो, क्योंकि मनुष्य गति से आकर तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न होकर वहां जघन्य आयु स्थिति प्रमाण काल तक रहकर वहां से निकलने वाले जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण जघन्य काल पाया जाता है। जा सकता है ना, अपर्याप्त लगातार अपर्याप्त ही हो ऐसी कोई गरज नहीं है, उसमें से पर्याप्त भी हो सकता है, तिरंच में जाएगा मनुष्य में जाएगा, परंतु यहाँ तिरंच में से तिरंच में आने वाले की इतनी जघन्य नहीं है आयु, ये बता रहे हैं। मनुष्य में से ये तिरंच में आया है और वहां से बाहर निकला है, ये लिखा ना, मनुष्य गति से आकर तीर्यंच अपर्याप्तों में उत्पन्न होकर वहाँ जघन्य आयु स्थिति प्रमाण काल तक रह कर वहाँ से निकल वाले जीव के बाहर निकल जाएगा, वहां से तो देवनारकी तो होगा नहीं अब ये वहां उत्कृष्ट रहने का काल, क्योंकि तिर्यंच में रहने का उत्कृष्ट जगन्य काल बता रहे प्रश्न, तिर्यंच में रहने का जगन्य काल है। अगर तिर्यंच में से ही आया है तो तिर्यंच का जगन्य काल कहाँ हुआ, नहीं समझे? नहीं नहीं नहीं, तिर्यंच गति में रहने का जगन्य काल बता रहे। तो तिर्यंच गति में यानी अन्य गति से तिर्यंच में आया और फिर अन्य गति में चला गया, तभी तो बात होगी। वो तो मनुष्य गति को अकेले को क्यों लिया, क्योंकि देव और नारकी में से अपर्याप्त में कोई जाएगा नहीं। तिर्यंच अपर्याप्त में या मनुष्य अपर्याप्त में भी कौन जन्मेगा, कौन जन्मेगा तो तिर्यंच जन्मेगा या मनुष्य जन्मेगा, परंतु तिर्यंच ही तिर्यंच में जन्मेगा। वो तिर्यंच गति की मिनिमम स्थिति कहाँ हुई? अभी यहाँ एक भव नहीं ग्रहण करना, पूरे गति का मिनिमम काल कितना है वो गति। यहाँ ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि नरक गति का मरकर पुनः नरक में नहीं जाता, इसलिए वहां जितनी आयु है उतना ही उस गति का एट ए टाइम काल जघन्य और उत्कृष्ट बताए। यदि नरक में से नरक में वापस जाता तो वो 33 सागर नहीं, उससे भी बहुत बढ़ जाता है, ख्याल है? अब तिर्यंच गति में उत्कृष्ट किसको बताएंगे? बार बार लगातार तिर्यंच में से मरकर तिर्यंच, तिर्यंच में से मरकर तिर्यंच, तिर्यंच में से मरकर, वो तो कितने ही हो गए असंख्यात, ये अनंत काल चला जाएगा उसमें, है ना? तो वो उत्कृष्ट में आएगी। बिल्कुल बांध सकता है। देखिए आपका प्रश्न ऐसा है, आपका ऐसा प्रश्न है कि इसको जो अपर्याप्त काल है इतने छोटे में मनुष्य का बंध बांधेगा? क्यों नहीं बांधेगा? क्योंकि वो आयु है तो आगामी आयु का बंध भी है उसमें, और
आप
उसमें असंख्यात समय है।
देखो आप उसको जो प्रश्न है आपका जो कि जो जीव एक क्षुद्र भव में आता है वो वहां से निकल कर मनुष्य की आयु बांध सकेगा क्या? नहीं, ऐसे ही आपका प्रश्न है ना, बिल्कुल बांधेगा। देखो पहले तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं वो देखिए, यहाँ तो तिर्यंच गति में रहने का जगन्य काल बताया और वह क्षुद्र भव प्रमाण बताया। अब जो तिर्यंच गति में आएगा वह तो अन्य गति से आने वाला है, डायरेक्ट अपर्याप्त में क्या कहते हैं, देव गति का जीव नहीं आएगा, नरक गति का नहीं आएगा, एक बात नक्की। तो रह गई कौन सी गति? मनुष्य गति। और तिर्यंच गति क्यों नहीं? क्योंकि तिर्यंच गति का मिनिमम काल हमें देखना है। तो मनुष्य में से तिर्यंच में आया, अभी वहां से निकलकर बाहर जाएगा तो ना देव गति में जाएगा और ना नरक गति में जाएगा, क्योंकि वह अपर्याप्त जीव है ना। तो जाएगा तो फिर तिर्यंच में जाएगा तो उसको मिनिमम नहीं गिनेंगे, तो मनुष्य में ही जाएगा।
यानी मनुष्य में ही जाने वाले के ही ये मिनिमम होगा,
आने वाला और जाने वाला दोनों स्टेशन एक है।
ऐसे हमें ऐसा लगता है इतनी छोटी आयु और मनुष्य आयु कैसी बांधी? तो कोई भी आयु बांधे तो टाइम तो उतना ही लगेगा, भले तिर्यंच आयु बांधे कि मनुष्य आयु बांधे। प्रश्न इतना हो सकते कि क्या उस जीव के ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि मनुष्य गति और मनुष्य आयु बांधे?
क्यों नहीं, परिणाम तो हर समय चलते ही है ना।
आगम का वाक्य उसको सिद्ध करता है, यहाँ बताया है ना कि मनुष्य गति में से आकर वहां जाने वाले जीव के ये तिर्यंच कैसे होता है। ये
भाई बात ऐसी है कि उसमें पहले ये तो समझ लीजिए कि उसमें चारित्र गुण है क्या नहीं, तो चारित्र गुण है तो राग द्वेष के परिणाम होंगे कि नहीं? वहाँ
उत्तर दे रहे हैं।
देखिए वह जो तिर्यंच गति का जीव है जो क्षुद्र भव प्रमाण रहने वाला है उसमें चारित्र गुण है क्या नहीं, तो चारित्र गुण का परिणाम होगा क्या नहीं? हाँ, उस समय उसके तो शुद्धोपयोग रूप यानी शुद्ध भाव तो नहीं होंगे, होंगे तो पाप या पुण्य के होंगे, और मनुष्य गति बांध रहे तो पुण्य के परिणाम चल रहे हैं और हम शेखी मार रहे हैं कि हम ही पुण्य के परिणाम करते हैं, ऐसा मत समझना। अरे वो तो अंतर मुहूर्त वो ऐसा परिणाम रखेंगे
तो है ना वहाँ देखिए 124 सेकंड हमने राउंड अबाउट निकाला उसमें तो सैकड़ों आवली होगी एक आवली में असंख्यात समय होते हैं
और वो जो कोई परिणाम है आयु बांधने के परिणाम भी अंतर मुहूर्त ही होंगे
आयु लगातार अंतर मुहूर्त तक बंधी जाती है एक समय में आयु का बंधन नहीं होता लगातार मिनिमम अंतर मुहूर्त होगी ही मिनिमम मैक्सिमम अंतर मुहूर्त ही होगी आयु का बंधन अधिक भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा अंतर यथा योग्य अंतर मुहूर्त हाँ अंतर मुहूर्त तक जो कुछ आयु बांध रहा है उसी आयु को उतनी स्थिति वाले हाँ कंटिन्यूस उसके परमाणु को ग्रहण करेगा आयु कर्म के परमाणुओं को कंटिन्यूस अंतर मुहूर्त तक ग्रहण करेगा उसमें अभी कोई मनुष्य आयु बांध रहा है अभी कितने 100 साल की बांध रहा है तो ये 100 साल की मनुष्य आयु उतने परमाणु वो हर समय ग्रहण कर रहा है कितने अनंत परमाणु ग्रहण करता है क्योंकि वो इतने काल में लिए हुए परमाणु अभी जितनी आगे की आयु है उतने प्रत्येक समय में वो खिरेंगे भी उसका उदय चलेगा ना उसका उदय चलेगा इतने 100 साल तक के लिए टिकेगा अभी हम तो मिनिमम 100 साल लिए कोई बड़ी आयु वाला भी होगा ख्याल आता है ना यानी अपर्याप्त में से मरकर कहाँ जाते हैं जीव तो या तो तिर्यंच में जाएंगे या मनुष्य में जाएंगे वो भी कर्म भूमि वाले भोग भूमि में तो जाएंगे नहीं अपर्याप्त जीव मरकर भोग भूमि में नहीं जाएगा नरक में नहीं जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा गति रही दो तिर्यंच और मनुष्य गति उसमें अपर्याप्त में भी जा सकता है पर्याप्त में भी जा सकता है परंतु यहाँ तिर्यंच गति का मिनिमम काल निकालना है इसलिए मनुष्य गति से लाया और मनुष्य गति में ही भेजा वापस तभी तो ये जघन्य आयु वहाँ सिद्ध हो सकती है हमें क्या देखना है एक जीव को जघन्य आयु किसके होगी जो मनुष्य गति में से मरकर अपर्याप्त में चला गया तिर्यंच के और वहां से मरकर फिर मनुष्य में चला गया ऐसे जीव को ये तिर्यंच गति का जघन्य काल है एक लाइफ टाइम नहीं लेनी है तिर्यंच गति में कम से कम रहने का काल कितना है उसकी बात चल रही है ये मार्गणा लगाए ना तिर्यंच गति में कितना मिनिमम रहने का काल ऐसा लिया यहाँ पर गति की अपेक्षा लगा रहे ख्याल है हाँ क्षुद्र भव उसके निकृष्ट परिणाम का फल है परंतु वो फल भोगते हुए ऐसा कोई परिणाम हो कि मनुष्य गति मनुष्य आयु भी बांधे हो ये हमें पता नहीं लगता कि उसको कैसे होते होंगे
नहीं 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 हमें तो ये देख रहे हैं उसका उपयोग स्पर्शन इंद्रिय के बाद चलेगा
ये
उसका उपयोग तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होगा लेकिन अपनी बात ये है कि वो जो परिणाम कर रहा है वो तो चारित्र गुण की पर्याय है
ये परमार्थ वचनी का
और हम तो यही ढूंढना चाहते कि कौन से परिणाम उसने किए होंगे ताकि हम भी करें
ये परमार्थ वचनिका में ऐसी बात है मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना उसके अंत में परमार्थ वचनिका लिखी है बनारसी दास जी की है तो उसमें लिखा है वो ज्ञान की हीनता है परंतु चारित्र में इतनी विशुद्धि है कि उसको मनुष्य पर्याय भी मिल सकती है तभी तो इतना ऊपर उठकर आया ना वो हीन पर्याय में से उठकर तो ये कोई ज्ञान की हीनाधिकता के ऊपर चारित्र में जो कुछ विशुद्धि या संक्लेश परिणाम संक्लेश विशुद्धि सामान्य है ये मोक्ष मार्ग की विशुद्धि यहाँ नहीं समझना विशुद्धि यानी विशिष्ट शुभ परिणाम की जो मनुष्य योग्य उसके परिणाम हो रहे हैं तो उसके वहां पर है देखो छोटा का अंतर्मूर्त है तो भी क्या वो अंतर्मूर्त छोटा है और देखो उसकी आयु जितना बड़ा अंतर्मूर्त है आयु बंधने का काल अभी इतना समझो 124th of a second हमने मान लिया है ये तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है फिर भी उसमें जो आयु बंधने वाला अंतर्मूर्त वो कितना छोटा होगा कितना छोटा होगा हाँ उसमें भी जन्मते ही नहीं बांधेगा ना विग्रह गति में बांधेगा उसमें भी थोड़ा 1/3, 2/3 जो कुछ काल बीत जाएगा ना उसका तभी तो बांधेगा
और विचार आता होगा ना अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं और ये तो 72 साल में चलेंगे
हाँ नहीं नहीं वो स्पर्शन इंद्रिय की उन्होंने बात निकाली कि उसको ज्ञान का उगाड़ एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही है, ऐसा उनका कहना था। स्पर्शन इंद्रिय की बात मैंने नहीं उठाई, वो उसका ज्ञान का उगाड़ उतना ही है। हाँ, ऐसा हमें लगता है कि स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान है तो क्या हुआ, ये तो चारित्र गुण अलग है, कौन से इंद्रियों के द्वारा क्या जान रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको वहाँ चारित्र गुण की संकलेश विशुद्धि परिणाम उसके नहीं हो रहे हैं।
भाई साहब यहाँ पर ये तो समझ लीजिए कि उसके एक स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान है फिर भी वो शुभ परिणाम कर रहे हैं, और हमारे पांच इंद्रिय का ज्ञान है और हम और मन भी है और हम कितने शुभ उपयोग में है न मालूम। हम पूजा में बैठे हैं तो हमारे पाप में उपयोग जाता है, न स्वाध्याय में बैठे हैं तो हमारा उपयोग कहीं चला जाता है। हम पंचेंद्रिय है ना, तो हम एकेंद्रिय वाले की हम अचरज करते कैसा करता होगा। अरे वो जो होता है सो होता है बस,
ऐसे मन ऐसा अपने पास है।
अभी अभी इस अवस्था में एक शवशमन ज्ञान में ही हम ये सारी बात जानेंगे तो केवली होने के बाद क्या जानेंगे। शांति रखो।
ये मन जो कंसंट्रेशन में एकाग्रता करने में और मोक्ष मार्ग जानने में तत्व निर्णय में जो उपयोगी है, अभी वही भटकाने में भी निमित्त है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कहाँ लगाते हो अपनी जहाँ रुचि है वहाँ लगता है मन। मन हमने देखा है, इसीलिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में या सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित अरुण जी ने लिखा है, ये मन तो मरकट जैसा है, अभी उसको तो ये कर्णानुयोग में नहीं लगाए तो कहाँ लगाएंगे। द्रव्यानुयोग में या आत्मा में भी इतना काल स्थिर होगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ उपयोग, भटक के तो भटकेगा अन्य में, पांचों इंद्रियों के विषय में भटकेगा। तो इसको नहीं जानेंगे तो पूरी दुनिया की खबरें जानकर बैठेगा वो चैनल इधर उधर 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 करते करते। एक टीवी है उसमें समझो आपको 50 चैनल है, तो कोई बैठने वाला शांति से एक चैनल देखता है कि मुझे बताओ, मैंने तो इतने लोग देखे, हमारे पास तो केबल नहीं है, वो तो भटकता है कि कहाँ क्या चल रहा है। मैंने जहाँ जहाँ मैंने देखा है तो केबल तो घुमाते ही रहता है, उसके चैनल बदलता है, तो मन कहीं ऐसा है तो चैनल बदलता ही रहेगा। आकुलता की ये जानने की भी आकुलता है भाई, गे लुब्ध है ना ये जीव, तो अकेले ये तो आती है ना बात, अकेले हम बना यानी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही है, ये गेय लुब्धता भी है, जानने की भी आकुलता है इसके। ज्ञातृत्व तो स्वभाव है, परंतु ये पर को जानने में उसमें इतना रस आता है, और वो कैसे राग भाव से जान रहे, केवली भी सबको जान रहे, उनके तो चैनल बदलने की जरूरत नहीं, सब चैनल उनके सामने चल रहे, फिर भी ये हम राग सहित उसमें है ना, ये हम क्यों बदलते हैं, राग है इसलिए बदलते, आकुलता है इसलिए बदलते। भोजन करने बैठे तो पहले चटनी खाएंगे, फिर और कुछ खाएंगे, फरसान खाएंगे और कोई मिष्ठान खाएंगे, ये क्यों बदल रहे, राग है ना, अलग अलग चीजों को भोगने का राग चल रहा है वहाँ। ये ऐसे यहाँ पर समझना, ये मन जो है ये तो हमें तत्व निर्णय करने के लिए उपयोगी है, और उसको हमने ये तो आकुलता में राग द्वेष में, और तो संगी पंचेंद्रियों को ज्यादा क्यों है इतना, ये मन के द्वारा और ज्यादा पाप करता है जी। यहाँ तो अपनी बात क्या चल रही है, तिर्यंच गति में कम से कम आयु किसकी है, गति की अपेक्षा हो, इंद्रियों की मार्गणा में जाएंगे तो इंद्रियों की अपेक्षा कहेंगे कि एक इंद्रियों में रहने का कम से कम काल कितना है, कितना होगा क्षुद्रभव, तो वहां क्या कहेंगे हम, मनुष्य गति से आया हुआ ऐसा कहने की जरूरत है क्या, वहां तो कहेंगे त्रस में से आया हुआ जीव, ख्याल है ना। एक इंद्रिय को छोड़कर द्विंद्रियाधिक पंचेंद्रिय, वहां तिर्यंच में आओ या मनुष्य में से आओ कोई बात नहीं, वहां से जो एक इंद्रिय में आया और फिर वापस त्रस में चला गया तो एक इंद्रिय का मिनिमम काल होगा, और त्रस का मिनिमम काल कैसे गिनेंगे, द्विंद्रिय का मिनिमम काल या तीन्द्रिय का, अन्य इंद्रियों से उसमें आया और फिर वापस अन्य में चला गया, ऐसे यहाँ तिर्यंच गति का कम से कम जघन्य काल कैसा है, मनुष्य गति से आया है क्योंकि क्षुद्र भाव में लाना है इसलिए देव और नारकी से आ नहीं सकता है, तो मनुष्य में से आया है।
ये जो है, उसका मरण के समय परिणाम अच्छा
आप बार बार वो अच्छे और बुरे परिणाम पर जा रहे हैं। ये तो केवली गम्य बातें हैं, मनुष्य में आने योग्य। अभी मिथ्यात्व में आ रहा है ना, वहां से चलकर मिथ्यात्व में आ रहा है। तो मिथ्यात्व में जो मनुष्य में आ रहा है उसके तो 6 लेशा हो सकती है। तो एक इंद्रियों में से आया है अभी वो, या अन्य कहीं से अपर्याप्त में से, हो सकता है संक्लेश में भी आया हो।
अभी गलती से हम मनुष्य पर्याय में आए हैं क्षुद्र भव में से, तो आगे बढ़े
आगे बढ़ेंगे, क्षुद्र भव में ही बहुत अटके हाँ। अभी आगे बढ़ेंगे हाँ। अभी उत्कृष्ट की बात करेंगे, तिरियंच में रहने की उत्कृष्ट का स्थिति कितनी उसकी बात चल रही है। उक्कस्य न अनंत कालम, ये अनंत कितना होता है, असंख्येज हुआ है, डबल ज करना, असंख्येज पोगल परियट्टम। क्या कहते हैं, तिरियंच जीव उत्कृष्ट से अनंत काल तक रहता है, यानी तिरियंच पर्याय में ही लगातार जन्म मरण करता हुआ। तिरियंच का एक भव नहीं लेना है, लगातार तिरियंचों के भव होते रहे तो उत्कृष्ट कितना है। तो कहते हैं उत्कृष्ट से अनंत काल तक रहता है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि यहाँ कहीं से आकर फिर वो जाने वाले जीव के भी, यानी उसको स्टार्टिंग भी और एंड भी ऐसा जीव लिया है। अगर स्टार्टिंग नहीं लेते तो कोई अनादि अनंत कौन सी गति में रह सकता है, मनुष्य गति में तो कोई अनादि से रह नहीं सकता, ना ही देव गति में और ना ही हाँ, तो तिरियंज में हाँ रह सकता है। क्योंकि नित्य युगत वाला तो अनादि अनंत समझो, कोई वहीं रहने वाला जीव ऐसा हो सकता है, अनंत काल के बाद भी उसका नित्य निगोद ही चल रहा है ना, अभी वहां से बाहर ही नहीं आया। परंतु यहाँ कौन सा लिया है, अन्य गति से आकर फिर जाने वाले का अधिक से अधिक काल कितना है उसकी बात यहाँ बोल रहे। तो ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, एक पुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल बीत जाता है। हमने पहले देखा था यहाँ विस्तार से पुद्गल परावर्तन, सभी पांचों परावर्तन की बात देखी थी। देखो तिरियंच जीव उत्कृष्ट से अनंत काल तक रहना हाँ रह गया है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यहाँ 12 नंबर लेना, क्योंकि अविवक्षित गतियों से आकर, अपनी तिरियंच गति हमारी विवक्षित है क्योंकि उसकी बात चल रही है। तो यहाँ कौन सा जीव लेना, अन्य गति से आया हुआ तिरियंचों में उत्पन्न होकर आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन काल तक। क्या कहते हैं, आवली प्रमाण ये रहेगा, आवली के असंख्यातवे भाग में जितने समय है उतने पुद्गल परिवर्तन। आवली का असंख्यातवा भाग भी असंख्यात ही होता है, क्योंकि आवली में तो जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं, उसका असंख्यातवा भाग करेंगे तो भी यथायोग्य परिता संख्यात में जाएगा ही। तो कहते इतने बार पुद्गल परिवर्तन होवे इतना काल तक यहाँ रह सकता है। अन्य गति से आया हुआ जीव ले लिया, यहाँ मनुष्य देव या नारकी में से आया है। मनुष्य और नारकी वो पंचेंद्रिय में आएंगे, बाद में घूमेंगे और एक इंद्रियों में वगैरह, परंतु कहीं ना कहीं वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तिरियंचों में ही घूम रहा है, ऐसा जीव लिया। अन्य गति से आकर तिरियंचों में जन्म लिया और अभी तिरियंचों में ही जन्म मरण कर रहा है, तो अधिक से अधिक काल कितना उसका। तो आवली का असंख्यात और भाग वाला जो असंख्यात है उतने असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक तिरियंचों में परिभ्रमण करके अन्य गति में जाने वाले, यानी इतने काल बाद वो वहां से निकल सकता है अधिक से अधिक। उस जीव के सूत्रोक्त असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल पाया जाता है। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहने पर आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही से वे पुद्गल परिवर्तन होते हैं। असंख्यात का प्रमाण भी यहाँ बता दिया, आवली का असंख्यात वा भाग वाला जो असंख्यात है उतनी बार पुद्गल परिवर्तन होगा, उतना यह उत्कृष्ट काल है। काल के माप में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन लिए, क्योंकि पुद्गल परिवर्तन, आपका प्रश्न है पांचों परिवर्तन क्यों नहीं लेना, क्योंकि पुद्गल परिवर्तन के आगे वाला कौन सा परिवर्तन हम गिनते हैं, द्रव्य परिवर्तन के बाद क्षेत्र परिवर्तन, एक क्षेत्र परिवर्तन होने के लिए अनंत पुद्गल परिवर्तन चले जाते हैं, और यहाँ हमने असंख्यात पुद्गल परिवर्तन लिए, तो क्षेत्र परिवर्तन एक भी पूरा नहीं हो रहा है तब तक, तो ख्याल है आगे वाले क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो तो अनंत अनंत में चले जाते हैं, जब अनंत पुद्गल परिवर्तन पूरे हो गए तब जाके एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होगा, और यहाँ पर हमने असंख्यात पुद्गल परिवर्तन ले लिए, ऐसे ही ना आगे आगे वाले जो अनंत क्षेत्र परिवर्तन पूरे होते तब एक काल परिवर्तन पूरा होता है, अनंत बार काल परिवर्तन पूरे होते हैं तब एक बार कौन सा भाव परिवर्तन होता है, और अनंत बार ऐसे भाव परिवर्तन हो गए तब जाके एक भाव परिवर्तन पूरा होता है, इसलिए आगे वाले परिवर्तन हमको नहीं गिनाया, ख्याल है ना। हाँ। शंका, असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों का तात्पर्य, आवली के असंख्यात वे भाग मात्र बार से ही है, वार से लिखा, वार यानी बार, अधिक नहीं, यह कैसे जाना जाता है, तो कहते आचार्य परंपरागत उपदेश से आचार्यों की परंपरा से ये बात पता चलती है। अब आगे, अब ये तिर्यंच गति की बात उन्होंने बता दी, अब उसमें कहते पंचिंद्रिय तिरिक्ख, पंचिंद्रिय तिरिक्ख पज्जत्त, पंचिंद्रिय तिरिक्ख जोनिनी केवचिरम कालादो होंती। अभी उसमें जगन्य और उत्कृष्ट बात करेंगे, क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, वो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, ये तो तिर्यंचों के अलग अलग भेद बता रहे हैं, अभी तिर्यंचों में भी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय होते, तो यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी पर्याप्त वाला भेद अलग किया, और योनिनी वाला यानी स्त्री वेद वाले जो है उसको अलग कर दिया। तो कहते जहन्येन खुद्दा भव गहनम अंतोमोत्तम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक वो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, वो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी अंतर्मुहूर्त काल तक रहते हैं। देखो पर्याप्त जीव, तिर्यंच पर्याप्त है, अपर्याप्त की बात नहीं है, तो पर्याप्त में कम से कम आयु कितनी होगी, तो अंतर्मुहूर्त, पर्याप्ति पूरी तो हो जाएगी, बाद में अंतर्मुहूर्त में मर सकते हैं, तो ये पर्याप्त जीव की कम से कम आयु अंतर्मुहूर्त। वही योनिनी के बारे में, क्योंकि जो सम्मूर्छन जीव है, ये सारे अपर्याप्त जीव है, वे सम्मूर्छन होते हैं ना, पर्याप्त भी होते पर अपर्याप्त कौन होते हैं, सम्मूर्छन होते, ख्याल है। क्षुद्र भवन वाली बात, उसकी बात चल रही, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंचों का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, कारण कि पंचेंद्रिय तिर्यंचों में अपर्याप्त जीवों का होना संभव है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, तो वहां भी क्षुद्र भव ग्रहण हो सकता है। शेष तिर्यंचों का प्रमाण काल अंतर्मूर्त है, शेष यानी अभी जो पर्याप्त है उनमें मिनिमम काल एक अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि उनमें अपर्याप्त नहीं होते, पर्याप्त जीवों में जघन्य आयु स्थिति का प्रमाण क्षुद्र भव ग्रहण काल नहीं होता, अर्थात उससे अधिक होता है, क्योंकि यदि पर्याप्त काल के जघन्य आयु प्रमाण भी क्षुद्र भव ग्रहण काल मात्र होता तो प्रस्तुत सूत्र में अंतर्मुहूर्त काल के उपदेश के निरर्थक होने का प्रसंग आ जाता, ये कोई निरर्थक बातें सूत्र में कहेंगे नहीं, इसलिए ये क्षुद्र भवन वाला काल जो कम है छोटा है, और पर्याप्तों के लिए जो अंतर्मुहूर्त काल है वो बड़ा है, क्योंकि क्षुद्र भवन वाले वो तो उनकी पर्याप्ति पूरे हुए बिना ही मरते हैं, और पर्याप्त जीव पर्याप्ति पूर्ण होकर अंतर्मूर्त में मरेंगे, इसलिए वहां अंतर्मूर्त लिया। अब ये पंचेंद्रियों की जघन्य बात बता दी। अपर्याप्त पंचेंद्रिय हो गए तो क्षुद्र भव ग्रहण काल, और पर्याप्त पंचेंद्रिय हो गए या योनिनी वगैरह होगी तो अंतर्मूर्त काल, ये जघन्य बता दिया। अब उत्कृष्ट रहने का काल बताएंगे। उपकस्सेन तिन्न पलिदोवमाणी पूव कोणी पुधत्तेन भियाणी, ये हमारा विषय जो काल कालानुयोग में हमने लिया था, वहां काल की बात हुई थी अपने, अभी यहां और अपने रिवीजन भी हो जाएंगे। देखो क्या कहते, उत्कृष्ट काल किसमें रहने का, पंचेंद्रियों में, तिर्यंच पंचेंद्रियों में, अकेले पंचेंद्रियों में नहीं, अपनी तिर्यंच गति की बात चल रही है, तिर्यंच गति में अभी पंचेंद्रियों की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट काल पर्याप्तों में ही होगा, क्षुद्र भव ग्रहण का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो तिर्यंच पंचेंद्रियों में बड़ी आयु किसकी है, भोग उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि के जीवों की, तीन पल्ले हैं, वो तो भोग भूमि की हुई, भोग भूमि के बाद तो नियम से तिर्यंच गति बदलकर देवगति में चले जाएंगे, तो भोग भूमि में जाने के पहले वो पंचेंद्रिय तिर्यंच में वहां जा सकते हैं, उसके पहले भी और एक भोग पंचेंद्रिय तिर्यंच का हो सकता है, उसके पहले भी हो सकता है, तो लगातार पहले हम पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भोग के बाद लास्ट वाला अगर भोग भूमि का लेंगे तो उसके लिए क्या कहा, तीन पल्योपम में कुछ अधिक मिला देंगे। तो कहते हैं उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक, कर्म भूमि में पंचेंद्रियों की अधिक से अधिक आयु कितनी है, पूर्व कोटि, तो ऐसे कई बार पूर्व कोटि की आयु के बाद अंतिम वो उत्तम भोग भूमि में चला गया, तो उसके लिए कहते हैं पूर्व कोटि पृथक्त्व, देव में ही जाएंगे, वहां से भी भोग भूमि कोई भी हो, उत्तम मध्यम जघन्य, वहां से नियम से देव में जाते, और ये तो तिर्यंचों की तो भोग भूमि कितनी है, सब असंख्या द्वीप समुद्रों में पड़े हैं, सारे द्वीपों में नहीं, समुद्रों है, द्वीपों में है, समुद्रों में नहीं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, तो ये सारे मिथ्या दृष्टि वो सारे भवनत्रिक में चले जाएंगे, और सम्यक दृष्टि वो सौधर्म ईशान में जाएंगे, उसके ऊपर नहीं, भोग भूमि के जीव पहले दूसरे स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते, सम्यक दृष्टि सारे ही सौधर्म ईशान में, और मिथ्या दृष्टि सारे वो ज्योतिषी में और यंत्रों में वगैरह। यहाँ ये क्यों ऐसा लिखा उतना हमें लेना, ये डिराइव कैसे किया, क्योंकि तीन पल्ले ये ज्यादा से ज्यादा है, यानी पल्लों की आयु बड़ी होती है और पूर्व कोटि तो छोटी है, तो भोग भूमि के बाद तो नियम से तिर्यंच गति बदलने वाली है, तो उसके पहले उनके लगातार तिर्यंचों के बड़ी आयु वाले भव हो गए, मैक्सिमम गिनना है ये, इसलिए पूर्व कोटि वाले लिया, और उसमें पृथक यानी कुछ उसके भव हो जाएंगे, अनेक भी हो सकते हैं, पहली बात भी आई थी ये अभी बताएंगे। देखो उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक, तीन पल्योपम प्रमाण काल तक पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त व पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीव रहते हैं। अब इसी को समझाएंगे, क्योंकि पंचेंद्रियों को छोड़ एकेंद्रिय आदि अन्य जातीय जीवों में से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त व पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में उत्पन्न होकर क्रमशः क्या कहते हैं, ये पंचेंद्रिय तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति बतानी है, बराबर, तो यहाँ जीव अन्य एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि में से पंचेंद्रिय में आया, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, तिर्यंच गति में भले हो या ना हो उसकी बात नहीं है, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपना क्राइटेरिया है, तो एकेंद्रिय आदि अन्य पर्याय में से ये पंचेंद्रिय में आया, तब से गिनना शुरू किया, और अंतिम भव वो भोग भूमि वाला लेंगे हम, इसलिए कहते हैं पंचेंद्रियों को छोड़कर एकेंद्रिय आदि अन्य जातीय जीव ये एकेंद्रीय जाति कहलाती है, द्विंद्रीय जाति कहलाती है, पंचेंद्रीय जाति कहलाती है। ये हिंदू मुस्लिम उसकी बात नहीं है। तो यहाँ आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में उत्पन्न होकर, क्योंकि उनका हमको उत्कृष्ट काल निकालना है, क्रमशः ये पृथक्त्व का अर्थ कितना आता है देखिए, 95 किसके लिए, जब पंचेंद्रिय तिर्यंच जनरल बात की तब 95 भव हो सकते हैं। पृथक्त्व पूर्व कोटि में कितने आए, 95 या 47, वो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त के लिए 47 और 15 पूर्व कोटि प्रमाण वो योनिनी के लिए। काल तक परिभ्रमण करके दान देने से अथवा दान का अनुमोदन करने से 3 पल्योपम की आयु स्थिति वाले भोग भूमिक तिर्यंचों में उत्पन्न होकर अपनी आयु स्थिति प्रमाण काल तक वहां रहकर देवों में उत्पन्न होने वाले जीव के सूत्रोक्त काल घटित होता हुआ पाया जाता है। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है किसी जीव के, पंचेंद्रियों का काल गिनना है तो एक इंद्रिय में से पंचेंद्रिय आया तब से काल शुरू किया तो उसके ऐसे लगातार कितने हो सकते हैं, बहुत तो 95। वहां पंचेंद्रिय तिर्यंच इतनी ही बात की थी, पर्याप्त अपर्याप्त की बात नहीं की थी। पर्याप्त में जन्मेगा लगातार, फिर एकाध भव अपर्याप्त होगा, फिर पर्याप्त होगा, ये कैसे होता है, ये बात हमने पहले कालानुगम में बहुत विस्तार से देखा था। हाँ, पृथक्त्व पूर्व कोटि ना, ये पृथक्त्व का अर्थ 95। आगे देखो, 15 पूर्व कोटि प्रमाण लिखा ना, यानी 95 पूर्व कोटि, 47 पूर्व कोटि या 15 पूर्व कोटि, ऐसा लेना उसका अर्थ। योनिनी को भी उत्कृष्ट आयु हो सकती है, देवों में देवियों की आयु पल्लों में होती है और देवों की सागरों में होती है। हाँ, वैसा नहीं है यहाँ। हाँ, 15 भव, एक पूर्व कोटि का एक भव लिया यहाँ। हाँ, उसके लिए एक पूर्व कोटि का कर्मभूमि वाला एक एक भव लिया, ऐसे 15 भव हो गए योनिनी के, 47 हो गए पंचेंद्रिय पर्याप्त के और 95 हो गए इन जनरल के। ये तो अलग अलग हर एक की। हाँ, टोटल भी 157 नहीं हो गए, क्योंकि योनिनी है वो तो पंचेंद्रिय में आ गए ना, वो उसको पकड़ के ही वहाँ वो 95 हो गए। इनकी टोटल अभी नहीं करनी है। हाँ, वो भोगभूमि वाला अलग, 3 पल्ले अलग। देखो 95 है उसमें ये सारे योनिनी विनी सब है, इसलिए ये फिर उसमें ये नहीं मिलाना, 95 में फिर ये नहीं ऐड करना। जैसे हम सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति में कितना गिनते हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर वे 70 कोड़ा कोड़ी तो अकेले ये इसका है, किसका, दर्शन होने का। अलग अलग कर्मों के जो अलग है वो उसमें मिलाते नहीं, मैं उसको तो अलग रखते है। तो इन जनरल जब बात की है तो सबकी वो तो अलग है। वहाँ अब यहाँ प्रश्न है, तिर्यंचों में दान देना कैसे संभव है? 95 मैक्सिमम, 95 अकेले पर्याप्तों की बात करेंगे तो 47 और अकेले योनिनी वालों की बात करेंगे तो 15। देखो शंका, तिर्यंचों में दान देना कैसे संभव है? नहीं, क्योंकि जो तिर्यंच संयता संयत जीव, तिर्यंचों में 5वें गुणस्थान तक है ना, तो ऐसा जीव सचित्त भंजन के प्रत्याख्यान अर्थात त्याग व्रत को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए शल्लकी के पत्तों आदि का दान करने वाले तिर्यंचों के दान देने में कोई विरोध नहीं आता, क्या बात है? सचित्त भंजन, सचित्त का त्याग, सचित्त खाने का त्याग, पांचवे गुणस्थान में होता है ना, कोई सचित्त का त्याग है, यानी वो पत्ते जो है वनस्पति के, वे तो उसका त्याग है। ऐसा त्याग का जिसने ग्रहण कर लिया है, ऐसे तिर्यंच को अन्य तिर्यंच दान देगी, उसकी बात है। तो शल्लकी के पत्ते, वो शल्लकी के पत्ते क्या होते मुझे नहीं पता, शल्लई पल्लवादी, उसमें वो सचित्त वाला दोष नहीं आता होगा। ये हम तो क्या सिंगाड़ा वो अलग आता है ना, जो कुछ है वो सचित्त छोड़कर जो कुछ है उसका दान देने वाले अन्य तिर्यंच जो है, अभी वो भी पंचेंद्रिय है ना, तो उनको भी पता है कोई कोई कुछ खाता नहीं है, उसने त्याग किया जो कुछ है, तो अन्य तिर्यंच उसके उसके अनुकूल उसको दे देंगे खाने के लिए। तो हाँ हाँ उनके हाँ अन्य तिर्यंचों ने संयमा संयमी तिर्यंचों को जो दान दिया उसके फल में भोग भूमि में गए, ऐसा कहते हैं। देखो और हमें लगता है कि हम मनुष्य बड़े बुद्धिमान हैं, तिर्यंचों में ये सारा ज्ञान पाया जाता है, ऐसी ये कथाएं भी खाते हैं। अभी ऐसे भी देखने में आया, ऐसे कहीं मैगजीन में छप कर आया था, मैंने सुना कि किसी की एक कोई औरत उसकी यानी डिलीवरी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वहाँ एक बंदर आया और उसने देखा, उसको पता चला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो झटके चला गया और कोई पत्ते लाया, वनस्पति लाया और उसको उसके खिला दिया उस औरत को, तो उससे वो सेफ डिलीवरी हो गई उसकी। यानी तिर्यंचों को भी इतना ज्ञान है ना, औषधि संबंधी ज्ञान है, आहार संबंधी भी उनका यथा योग्य जो कुछ चलता होगा, कि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके भी प्रॉब्लम्स आती है और उनके भी कुछ ना कुछ दवाइयाँ चलती होगी ना, तो वो दवा का दान देता होगा कि नहीं देता होगा, या तो आहार दान की बात निकली शंका स्त्री पुरुष व नपुसक वेदी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में आठ आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल तक ही जीव रहता है, यह कैसे जाना जाता है? ये 47 क्यों लिए थे, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त लिया ना, तो आठ 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 त्रिक 24 और फिर एक भाव उसमें 24 दोनी 48 नहीं हाँ 48 हो जाते हैं, उसमें से एक इसका कम किया और बीच में एक उसका पहले हमने पढ़ा है, बहुत विस्तार से लिया था वहाँ। तो यह कैसे जाना जाता है, तो उसका समाधान आचार्य परंपरागत उपदेश से, और ये उपदेश क्या है, कैसे निकाला ये 95 और 47 अंक कैसे निकाले, उसकी हमने वो चर्चा पहले कालानुगम में देखी थी। अब कहते हैं पंचेंद्रिय तिरिक्ष अपज्जता केव चिरम कालादो होती, पंचेंद्रिय अपर्याप्त लगातार पंचेंद्रिय अपर्याप्त ही होता रहे वह जीव, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जहन्येन खुद्दा भव ग्रहणम, ये तो आसान है ना, पंचेंद्रिय का जघन्य भव क्षुद्र भव ग्रहण, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त रहते हैं, क्योंकि किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर, अन्य पर्यायों से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में उत्पन्न होकर सर्व जघन्य काल से भुज्यमान आयु को ओहो कदली घास से नष्ट करके, क्या कहते हैं, क्षुद्र भोगन काल तो छोटा है ही है, उसमें भी भुज्यमान आयु को कदली घात से नष्ट करके, उसमें भी कदली घात होकर क्षुद्र भव ग्रहण काल प्रमाण काल तक रहकर निकल जाने वाले जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। शंका शंका कर लेनी पड़ेगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक